अध्याय पांच देवी माँ सहचरी प्राण। प्रकृति की भांति ही छायावादी कविता में नारी की भी प्रधानता दिखाई पड़ती है। यहाँ तक कि छायावाद के विरोधी बहुत दिनों तक छायावाद को स्त्रैण काव्य कहते रहे। छायावाद के पूर्ववर्ती काव्य में नारी संबंधी रचनाएं न हो ऐसा तो नहीं है, किंतु ये रचनाएं पुरुष प्रधानता की ही द्योतक हैं। द्विवेदी युग की कविता में नारी के प्रति दया का भाव तो है, पर यथोचित सम्मान का भाव नहीं है। उस युग में निसंदेह विधवाओं को लेकर अनेक कविताएं लिखी गईं, लेकिन उन कविताओं में विधवा को खाना कपड़ा दिलाने का ही आग्रह अधिक है, और इसीलिए विधवा विवाह को आवश्यक ठहराया गया है। द्विवेदी युग का यह काव्य एक प्रकार से अनाथालय प्रतीत होता है, जिसमें नारी को आश्रय देने के साथ ही वंदनी भी बना दिया गया है, और इस तरह वह अपने सहज जीवन से विच्छिन्न कर दी गई। आर्य समाज की कट्टर शुद्धिवादी नैतिकता ने द्विवेदी युग के संपूर्ण काव्य को निरस्ता और वर्जना से भर दिया। चारों ओर निरस विशद गुणमय फल वाले कपास का वातावरण छा गया। संभवतः इसी प्रभाव के कारण आरंभ की स्वच्छंदतावादी कविताओं में नारी की तुलना में प्रकृति को ही अपनाने योग्य कहा गया है। राम नरेश त्रिपाठी का पथिक प्रकृति के लिए अपनी पत्नी को छोड़ देता है, और 1918 में पंत भी इसी प्रकार सोचते हैं। छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दो लोचन। लेकिन धीरे धीरे यह संकोच कम हुआ। द्विवेदी युगीन आर्य समाजी नैतिकता का प्रभाव क्षीण हुआ, और प्रकृति के बीच ही छायावादी कवि को नारी के नैसर्गिक रूप का दर्शन हुआ। यही वजह है कि त्रिपाठी जी का पथिक भी आगे चलकर अपनी भूल महसूस करता है और प्रकृति से लौटकर पुनः अपनी पत्नी को स्वीकार करता है। पंत भी उच्छ्वास, आंसू और ग्रंथि की बालिका के साथ स्नेह सूत्र में बंधते हैं, और यहाँ तक कि भावी पत्नी की कल्पना भी करने लगते हैं। वे अनुभव करते हैं कि प्रकृति से ही काम नहीं चल सकता। प्रकृति चाहे जितनी सुंदर और भावप्रवण हो, किंतु वह पूर्ण रूप से पुरुष के भावों को प्रतिध्वनित नहीं कर सकती, अथवा अधिक से अधिक उन भावों को प्रतिध्वनित ही कर सकती है। प्रतिध्वनि को ज्यों का त्यों लौटा देने के सिवा शून्य क्षितिज के पास और सामर्थ्य क्या है? और तब स्वाभाविक है कि वह उस टकराती बलखाती सी पगली सी फेरी देती हुई प्रतिध्वनि के लिए कोई दूसरा आश्रय ढूंढे, ऐसा आश्रय जो प्रत्युत्तर दे सके। कवि ने बड़ी विकलता के साथ अनुभव किया कि हाय किसके उर में उतारूं अपने उर का भार, और यहीं प्रकृति की अपूर्णता प्रतीत हुई तथा उसके स्थान पर नारी का आविर्भाव हुआ। निराला के तुलसीदास का मन जब रंग परंग छोड़ता हुआ निस्तरंग आकाश में उड़ रहा था, तो वहीं उसे रत्नावली के दर्शन हुए। उसी समय छाया के ऊपर तारिका से चमकते हुए रत्नावली दिखाई दी। तुलसीदास क्षण भर वह सौंदर्य देखते रहे, और फिर जब वहां से उतरे तो संपूर्ण प्रकृति रत्नावली की छवि से रंगी हुई दिखाई पड़ने लगी। फिर तो उन्हें सारा संसार ही अबलामय दिखाई देने लगा। यही स्थिति प्रसाद के मनों की भी हुई। महाप्रलय समाप्त होने के बाद जब प्रकृति का रमणीय रूप सामने आया, तो उसी दृश्य में उनकी अलस चेतना की आंखें भी खुल गई, और फिर तो नव हो जागी अनादि वासना मधुर प्रकृति की भूख समान, चिर परिचित सा चाह रहा था द्वंद सुखद करके अनुमान। इस अनादि वासना के जगते ही मनु के मन में अट्ठास कर उठा रिक्त का वह अधीरतम सूना राज। फलता पाले तो विश्व कमल की मृदुल मधुकरी तथा इंद्रजाल जननी रजनी सामने आई, और उसके बाद स्वयं काम तनया श्रद्धा। इस प्रकार जो प्रकृति आरंभ में नारी विरोधी प्रतीत होती थी, वह नारी की आवश्यकता अनुभव कराने लगी तथा कारण बन गई। इस पर यह भी कहा जा सकता है कि द्विवेदी युगी नारी समाजी नैतिकता की प्रतिक्रिया का पहला सोपान प्रकृति प्रेम था, जिसने नारी प्रेम के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। कविता में नारी संबंधी दृष्टिकोण में यह जो परिवर्तन हुआ, यह आकस्मिक नहीं है। 19वीं सदी में जो सुधार आंदोलन आरंभ हुआ था, वह 20वीं सदी का प्रथम पाद समाप्त होते होते बहुत जोर पकड़ गया। नारी शिक्षा में बड़ी तेजी से प्रगति हुई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 1900 में शिक्षा ग्रहण करने वाली लड़कियों की संख्या जहां लगभग 4 लाख थी, वहां 1925 में यह संख्या उसकी तिगुनी अर्थात 12,30,698 हो गई और 1935 तक जाते जाते 7 गुनी से भी ज़्यादा हो गई। नई शिक्षा के द्वारा लड़कियों को नई दुनिया का ज्ञान हुआ और उनमें नए विचारों का उदय हुआ। इससे लड़कियों में स्त्री स्वतंत्रता का भाव पैदा हुआ। नई पीढ़ी की देखा देखी पुरानी पीढ़ी के महिलाओं में भी अनजाने ही नवजागरण के प्रति आकर्षण दिखाई पड़ा। लड़कियों ने अपनी माताओं और सांसों के प्रति जकड़े हुए मन को थोड़ा सा ढीला किया। वैसे ज्ञान तो अपने आप में ही मुक्ति का कारण है, किंतु नई शिक्षा ने इससे भी बड़ा काम यह किया कि पढ़ लिख कर लड़कियाँ जीवन के व्यापक कार्य क्षेत्र में आईं। विद्यालयों में एक ओर यदि वे लड़कों के संपर्क में आईं तो विद्यालयों से निकलकर अध्यापन, डॉक्टरी, वकालत वगैरह का पेशा अपनाकर उन्होंने व्यापक समाज के साथ संपर्क स्थापित किया। पुरुष और स्त्री के सहयोग से समाज का सदियों पुराना जीर्ण शीर्ण पर्दा फट गया, दुराव कुछ कम हुआ और आपस में एक ऊंचे स्तर की समझबूझ का भाव पैदा हुआ। मुक्त नारी में पुरुष को अभिनव सौंदर्य का दर्शन हुआ। नारी के मुक्त मन में पुरुष को स्पृहणीय भाव संपदा का परिचय मिला और इस तरह नारी की मुक्ति में उसे अपनी मुक्ति का द्वार दिखाई पड़ा। पुरुष और स्त्री के बीच का पुराना तनाव कुछ कम हुआ और पारस्परिक विचार विनिमय के आधार पर उच्चतर स्वभाव विकसित होने लगा। मिलने जुलने से ही मेलजोल होता है, गलतफहमी दूर होती है, परिचय बढ़ता है और फिर उस बीच यथोचित रागात्मक संबंध का उदय होता है। सामाजिक जीवन के साथ ही स्त्रियों ने इस युग में राजनीतिक आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। कांग्रेस के आंदोलन में काफ़ी स्त्रियों ने योग दिया। उन्होंने दुकानों पर पिकेटिंग की, सार्वजनिक सभाओं में भाग लिया, मंच से ओजस्वी भाषण दिए, वे जुलूसों में निकली और उन्होंने लाठियों का वार झेला तथा अंत में वे जेल भी गईं। इस तरह वे घर से बाहर आईं और बाहर आकर उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दिया। इन तमाम बातों का असर कविता पर भी पड़ा। नारी के प्रति पहले जो दया का भाव था वह बदल गया। इस युग में नारी ने पुरुष को दया के स्थान पर अपने अधिकारों की मांग की। इस अधिकार भावना ने नारी पुरुष के बीच कहीं समानता का भाव पैदा किया, कहीं स्पर्धा का भाव और कहीं उसके शक्ति स्वीकार का भाव। कुल मिलाकर भिखारिणी अब मानसिक रूप से स्वामिनी बनी। एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो सकती है। यदि विधवा संबंधी द्विवेद युग और छायावाद युग की दो कविताएं अथवा कहानियां ले ली जाएं तो दोनों युगों का अंतर साफ हो जाएगा। सुधार युग के नेता विधवा की समस्या का सबसे बड़ा हल विवाह समझते थे। इसमें विधवा को खाना कपड़ा का जोग जुटाने का भाव तो था, लेकिन उसमें नारी की स्वतंत्रता स्वीकार करने का भाव न था। इसलिए विवाह के लिए पुरुष को तैयार करते समय प्रायः बाल विधवा होने का तर्क दिया जाता था। उन लोगों के अनुसार पुनर्लग्न का अधिकार बाल विधवा को विशेष रूप से था, क्योंकि पति पवित्रता का सेहरा उसी के सिर बंधा होता है। इस धारणा का पर्दाफाश आगे चलकर शरदचंद जैसे लोगों ने किया। लीला रानी गंगोपाध्याय को एक पत्र में शरद बाबू लिखते हैं, यूनाइटेड कामा, तुमसे एक प्रश्न और करूंगा। जिस विधवा ने पति को जाना नहीं, पहचाना नहीं, लेकिन जिसने एक बार जाना है, पहचाना है, अर्थात जो 16-17 वर्ष की उम्र में विधवा हुई है, उसे क्या अपने लंबे जीवन में और किसी को प्यार करने या ब्याह करने का अधिकार नहीं? क्यों नहीं? जरा सोच देखने पर पता चल जाएगा कि इसमें यही संस्कार छिपा हुआ है कि स्त्री पति की वस्तु है, स्त्री के रूप में नारी की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। हेम संशय के अंदर दिन बिता रही है, इसमें दृढ़ता नहीं, उसके लिए क्या बंधन ही अच्छा नहीं है? बंधन केवल तभी अच्छा होगा जब इस प्रश्न का अंतिम निर्णय हो जाएगा कि विवाह ही नारी के लिए सर्वश्रेष्ठ श्रेय है। लेकिन मैंने कहीं भी विधवा विवाह नहीं करवाया है, यह बात तुम्हें विचित्र लग सकती है। बाल वैधव्य के आधार पर विधवा को पवित्र मानने की यह भावना द्विवेदी युग में न थी, बल्कि इसका प्रभाव छायावाद के आरंभिक दिनों तक था। निराला की प्रायः उद्धृत की जाने वाली कविता विधवा में भी यही मनोवृत्ति है। निराला ने जिस विधवा को इष्ट देव के मंदिर की पूजा से पवित्र कहा है, उसने अपना मधुसुहाग दर्पण में देखा था और एक बार बिंबित अपना जीवन धन। पति के साथ कुछ वर्ष बिताकर विधवा होने वाली नारी को इष्ट देव के मंदिर की पूजा से पवित्र कहने का साहस उस समय स्वयं निराला को भी न था। इसे उस युग के नारी संबंधी दृष्टिकोण का ही प्रभाव समझना चाहिए। शरद बाबू ने इसीलिए लीला रानी की कहानी के माध्यम से इस प्रवृत्ति का विरोध किया और फिर उन्होंने स्वयं विधवा विवाह न करवाने की जो बात लिखी है उसके मूल में भी वही प्रतिक्रिया है। आखिर विधवा विवाह क्यों? किसी बाल विधवा से यदि एक पुरुष ने विवाह ही कर लिया तो क्या हो गया? उस पुरुष ने आखिर कौन सा बड़ा काम कर दिया? विवाह तो उसने तभी किया जब प्रमाणित हो गया कि लड़की अनाघ्रात पुष्प और अनास्वादित मधु की तरह विशुद्ध है। इतने बड़े प्रमाण पत्र के बाद भी उसने किसी सहज स्नेह के कारण उसे पत्नी रूप में अंगीकार नहीं किया, बल्कि समाज की दृष्टि में उसे अपना कर उस पर, उसके माता पिता पर तथा समाज पर बहुत बड़ा एहसान किया और स्वयं बहुत बड़े समाज सुधारक होने का गौरव लिया। सो अलग स्वयं तो इतना बड़ा गौरव लिया और उसके बदले उस नारी को दिया क्या? उसके पाँव में दास्ता की वही पुरानी जंजीर। शरद बाबू ने विधवा विवाह नहीं करवाया है, उसके पीछे इसी ढोंग की प्रतिक्रिया है। इसका मतलब यह है कि सन 1920 के बाद वाले युग में विचारकों ने विधवा समस्या को नारी स्वाधीनता के व्यापक परिदृश्य में रखकर देखा। इस तरह देखने से अकेले विधवा अथवा विधवा विवाह की समस्या ही खत्म हो गई। यही वजह है कि छायावाद युग के कवियों ने विधवा पर कविताएं नहीं लिखी। उन्होंने सवाल को नए सिरे से उठाया। उन्होंने अनुभव किया कि मूल प्रश्न नारी स्वाधीनता का है। प्रश्न विवाह का नहीं, प्रेम का है। बंधन का नहीं, मुक्ति का है। यदि विवाह में बंधन है तो चाहे वह विधवा विवाह हो अथवा कुमारी का, दोनों का आग्रह व्यर्थ है। इस तरह साहित्य में पहली बार स्त्री और पुरुष के बीच वैयक्तिक स्वच्छंद प्रेम का अभ्युदय हुआ। यह स्वच्छंद प्रेम व्यक्ति स्वातंत्र का ही अनिवार्य परिणाम तथा उसका आवश्यक अंग है। उसके फलस्वरूप पहली बार छायावादी कविता में नारी को प्रेयसी का ऊंचा आसन प्राप्त हुआ। प्रेयसी, प्रिय, प्रियतमे और सखी, सजनी जैसे संबोधन जिस मात्रा में छायावादी कविता में व्यक्त किए गए पहले शायद ही किए गए। सखी और सजनी शब्दों की बहुलता को देखकर कुछ लोगों ने विनोद में छायावाद को सजनी संप्रदाय नाम दे दिया, जैसे यह मध्ययुगीन सखी संप्रदाय का पुनरुत्थान ही हो। छायावादी कविता के इन सखी सजनी संबोधनों के काफ़ी खिल्ले उड़ाए गए, परंतु इन सबसे स्त्री पुरुष के बीच स्थापित होने वाली समानता के नवीन भावना के प्रति प्राचीनता के पोषकों का पूर्वाग्रह ही प्रकट होता है। वास्तविकता यह है कि पूर्व पीढ़ी के साहित्यकार स्वयं तो प्रेम काव्य लिखने से कतराते रहे, लेकिन जब छायावादी कवियों को प्रेम की राशि लुटाते देखा तो और कुछ न पाकर उसका उपहास करके ही अपनी तृप्ति करने लगे। छायावादी कविता में प्रेम को जो प्रधानता मिली वह अपूर्व है। यहाँ तक कि छायावाद को सामान्यतः प्रेम काव्य समझा जाता है। द्विवेदी युग में सुधारवादी नैतिकता का इतना आतंक था कि प्रेम की कविता लिखते हुए कवि जन संकोच करते थे, क्योंकि उन्हें रीतिकालीन कहे जाने का डर था। वस्तुतः द्विवेदी युग में भी नारी के प्रति पुरुष का दृष्टिकोण बहुत कुछ वही था जो रुतिकाल में था। दोनों युगों में दृष्टिकोणों में मौलिक अंतर नहीं था। अंतर इतना था कि रीतिकालीन कवि जिन बातों को निधड़क कह देता था, द्विवेदी युग का कवि उन्हें मन ही मन दबा लेता था। काल में स्त्री सुधार का कोई आंदोलन नहीं हुआ, इसलिए उन कवियों पर कोई नैतिक अंकुश न था और द्विवेदी युग में प्राचीनता के गर्भ से रूढ़ियों के विरुद्ध नवीन प्रतिक्रिया शुरू हो गई थी। इसलिए ये कवि अपने ऊपर एक प्रकार का नैतिक अंकुश अनुभव करते थे। छायावाद युग तक आते आते नवीन प्रतिक्रिया काफ़ी पुष्ट हो गई और पुरानी रूढ़ियाँ जर्जर हो चली। इसलिए स्त्री पुरुष के संबंधों में नवीन नैतिकता की प्रतिष्ठा हो गई। द्विवेदी युग में प्राचीनता और नवीनता का संघर्ष आरंभ ही हुआ था, जबकि छायावाद युग में उस संघर्ष की नवीन शक्ति प्रबल हो गई। द्विवेदी युग में इच्छा और क्रिया, विवेक और संस्कार के बीच जो असंगति थी वह छायावादी युग में बहुत संतुलित हो गई। इसका मतलब यह नहीं है कि द्विवेदी युग के लोग छायावाद युग में आकर नवीन नैतिकता अपना चले, वह तो होना कठिन था। इसका मतलब केवल इतना ही है कि छायावाद युग में युवकों की जो नई पीढ़ी आई उसने स्त्री पुरुष संबंध का यह विकसित रूप सामने रखा, जिसका चतुर्पात द्विवेदी युग में ही हो चुका था। यह नवीन नैतिकता विवेक पर प्रतिष्ठित थी, इसलिए पुरानी पीढ़ी के लोग बौद्धिक स्तर पर इसका खंडन न कर सकते थे और हार कर इसकी प्रधानता उन्होंने स्वीकार कर ली। छायावाद युग में उभरने वाली यह नवीन नैतिकता प्रेम प्रधान थी, इसमें द्विवेदी युगीन द्विधा न थी। छायावादी कवियों ने प्रेम को इतनी प्रधानता दी कि स्वतंत्र रूप से प्रेम के ऊपर कई कविताएं लिख डाली। इस प्रकार अत्यंत प्राचीन काल में कामदेव अथवा मार्ग की प्रधानता थी और काव्य में उसकी उपासना का प्राय वर्णन किया जाता था, जैसे कालिदास के काव्यों और नाटकों में उसी तरह छायावाद युग में प्रेम को प्रधानता दी गई। प्रेम के विश्वव्यापी प्रभाव से भी सभी छायावादी कवि प्रभावित थे, वे प्रेम के जादू में थे, उन्होंने प्रेम को अत्यंत महिमामय रूप प्रदान किया। प्रेम का ही एक सरल स्निग्ध रूप स्नेह है, जिसकी महिमा गाते हुए पंत उच्छ्वास में लिखते हैं, अनिल सा आलो लोक लोक में हर्ष में और शोक में कहीं नहीं है स्नेह सांस सा सबके उर में। फिर स्नेह के एकतामय शब्द का गुणगान करते हुए वे आगे कहते हैं, बदे हैं जीवन तार सब में छिपी हुई है यह झंकार, हो जाता संसार नहीं तो दारुण हाहाकार। और सूक्ष्म स्नेह के वर्णन में जब तृप्ति नहीं हुई तो पंत ने उससे भी आगे बढ़कर अनंग पर विस्तृत कविता लिखी। निसंदेह यह अनंग कालिदास के युग का मूर्त कामदेव नहीं है। कालिदास विगिन पौराणिक कामदेव तो शंकर के तीसरे नेत्र से भस्म हो गया, जबकि वह उस समय भस्म न भी हुआ था तो आधुनिक विज्ञान उसे अवश्य भस्म कर देता। लेकिन वास्तविकता यह है कि पौराणिक पुरुष कामदेव का वह आकार बहुत पहले ही दग्ध हो चुका था और वह सूक्ष्म अनंग हो चुका था। छावाद तक आते आते उसकी रही से स्थूलता भी समाप्त हो गई और पंत का अनंग सभी प्रकार छायावादी अनंग है, जिसमें अतीत की केवल स्मृति भर रह गई है और अतीत की स्मृति का वह पुनरुत्थान भी अनंग को अधिकाधिक मोहक बनाने के लिए ही है। इस तरह यह अनंग पौराणिक अनंग का नवीन संस्करण है, जैसा कि हर पुनरुत्थान में हुआ करता है। पंत की कामना है, आय असीम सौंदर्य सिंधु की विपुल वीचियों के श्रृंगार, मेरे मानस की तरंग में पुनः अनंग बनो साकार। ध्यान देने योग्य है कि यह अनंग असीम सौंदर्य सिंधु की विपुल वीचियों का श्रृंगार है और इसे साकार भी होने के लिए कभी कहता है तो मानस की तरंग में। छायावादी कभी अनंग से पुनः शरीर धारण करने के लिए नहीं कहता, कहता है केवल मनोजगत में फिर से उठने के लिए निसंदेह नवीन रूप में। और इसमें कोई शक नहीं कि छायावाद में प्राचीन भावना ने प्रेम के नवीन सूक्ष्मतर तथा अधिक सुसंस्कृत रूप में पुनर्जन्म ग्रहण किया। विपुल कल्पना से भावों से खोल हृदय के सौ सौ द्वार, जल थल अनिल अनल नभ से कर जीवन को फिर एकाकार। यदि शैशव स्नेह के कवि पंत ने प्रेम के विषय में इतना लिखा तो प्रेम पथिक प्रसाद के हृदय का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। आरंभ में उन्होंने जो कुछ लिखा सो तो है ही, अंत तक जाते जाते उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन दर्शन की प्रतिष्ठा ही काम की आधारशिला पर की। उसके मन के विश्वास को सुदृढ़ करने वाली तथा उच्च स्तर पर ले जाकर प्रतिष्ठित करने वाले श्रद्धारोपिणी कामायनी काम तनया ही है। प्रसाद के मनु को काम गोत्रजा कामायनी तो आनंद लोक में ले ही जाती है, स्वयं काम भी समय समय पर आत्मा की आवाज बनकर जीवन संदेश दे जाया करता है। और प्रसाद का काम यही नहीं पौराणिक काम से अधिक भव्य उदात्त और आधुनिक है, बल्कि पंत के अनंग से भी कहीं अधिक व्यापक है। काम को संभवतः आधुनिक कवि के हृदय का आश्रय लेना न पड़ता यदि प्राचीन कवियों के अभिव्यक्ति से ही उसे तृप्ति हो गई होती, लेकिन ऐसा भी कहीं हुआ है। मनुष्य की यह जो जय यात्रा है उसमें उसके मनोजगत का भी निरंतर विकास होता चलता है। इसी दशा में प्रेम भावना का भी विकास होना स्वाभाविक है। इसीलिए प्राचीन काल की प्रेम भावना से ही आधुनिक मानव की तुष्टि नहीं हो सकती। आधुनिक मानव मन में जो अनेक प्रकार की सूक्ष्म अनुभूतियां पैदा हो गई हैं, उनकी प्रतिध्वनि प्राचीन काव्य में कैसे मिल सकती है। इसीलिए यह अपनी तृप्ति के लिए नवीन अभिव्यक्त करता है। प्रसाद के मनु को जब काम की यह प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है कि प्यासा हूँ मैं अब भी प्यासा संतुष्ट ओग से मैं न हुआ, तो वह वस्तुतः आधुनिक मानव हृदय की प्यास की पुकार है। प्रसाद के मनु के जीवन वन में यह मधुमेह वसंत चुपके से रजनी की पिछले पहरों में आता है, जिसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि बदली हुई दिखाई देती है। इस उद्दाम भावना के प्रभाव से आकाश भी शेषनाग की भांति अपना फेनेल फन फटक रहा, मड़ियों का जाल लूटता सा, उनिद्र दिखाई देता हो उन्मत्त हुआ कुछ गाता सा। और उस मूल शक्ति की पुनरुत्थान से संपूर्ण ब्रह्मांड के अणु पर परमाणुओं में बिजली सी दौड़ गई। लता वृक्ष से लेकर पशु पक्षी और देवधनुष तक संपूर्ण चराचर में काम के प्रभाव का वर्णन तो पहले भी किया गया है, किंतु प्रसाद की कामायनी में जो अंतरिक्ष के मधु उत्सव में विद्युत कण मिले झलकते से दिखाई पड़ते हैं, उसका वैभव कुछ और है। उधर काम के आगमन पर मनु के मन की जो दशा होती है वह तो और भी गूढ़ है। इस गहन मन स्थिति से प्राचीन कवियों द्वारा वर्णित सीधी काम उत्तेजना की कोई तुलना नहीं। श्रुतियों में चुपके चुपके से कोई मधुधारा घोल रहा, इस नीरवता के पर्दे में जैसे कोई कुछ बोल रहा है। स्पर्श मलय के जलमल सा संज्ञा को और सुलाता है, पुलगित हो आंखें बंद किए तंद्रा को पास बुलाता है। उड़ती है किरणों के ऊपर कोमल किसलय की छाजन सी, स्वर का मधु नेस्वन रंध्रों में जैसे कुछ दूर बजे वंशी था। व्यक्ति सोचता आलस में चेतना सजग रहती दुहरी, कानों के कान खोल करके सुनती थी कोई ध्वनि गहरी। लेकिन यह तो हुआ काम का केवल एक पक्ष। प्रसाद का काम उनके मनु में एक ओर जीवन की लालसा उत्पन्न करता है तो दूसरी ओर कर्म की प्रेरणा भी देता है, और इन सब के ऊपर वह मंगलमय है। प्रसाद के अनुसार सारा श्रेय काम मंगल से मंडित है और संपूर्ण सर्ग इच्छा अथवा काम का ही परिणाम है। इस तरह प्रसाद ने काम को वासना की सीमा से निकालकर व्यापक जिज्ञासा अथवा इच्छा के रूप में प्रतिष्ठित किया है। प्रेम की मूल प्रवृत्ति काम और रीति को यह व्यापकता प्रदान ने आधुनिक जागरण के व्यापक सामाजिक चेतना को प्रतिबिंबित और प्रभावित किया। प्रेम को यह प्रधानता निराला के यहाँ भी मिली। परोक्ष रूप से प्रेम की अभिव्यंजना तो उनके गीतों और कविताओं में हुई है, परंतु उन्होंने प्रेम की महिमा में अलग से एक कविता भी लिखी, अनामिका की प्रेम के प्रति। कविता में वे लिखते हैं, प्रेम सदा ही तुम असूत्र हो, उर उर के हीरों के हार, गुथे हुए प्राणियों को भी गुथे न कभी सदा ही सार। प्रेम को असूत्र कहकर मुक्तवर्णा निराला ने नवीन युग की स्वच्छंदता का परिचय दिया ही मधे हुए प्रेम को मुक्त भी कर दिया। निराला का प्रेम एक ओर असूत्र है तो दूसरी ओर प्रगल्भ भी। इसे उन्होंने प्रगल्भ प्रेम कविता में प्रमाणित कर दिया है। इस युग की अभिनव प्रेम भावना से पुरुषों के साथ नारियां भी प्रभावित हुई थी और उन्होंने भी सामाजिक दबाव के बावजूद अपने हृदय की स्वच्छंद प्रेम भावना की अभिव्यक्ति की। महादेवी के गीतों में प्रेम की जो पीर व्यक्त हुई है वह सुहृदयों में छिपी नहीं है, उसके लिए तो प्रिय से कम मादक पीर नहीं। शैवादिक कवियों ने प्रेम को ही इतनी प्रधानता दी, इससे नीरस जीवन में सरसता का संचार हुआ। सुधार युग की अस्वाभाविक सुदुक्कड़ी वृत्ति से छुट्टी मिली, नीरस जीवन यापन के स्थान पर रागात्मक जीवनचर्या आरंभ हुई, जीने का स्वाद कुछ और बढ़ गया। साथ ही मध्ययुगीन ऊंची रीति भावना से ऊपर उठकर मनुष्य प्रेम की उच्च भूमि पर विचरण करने लगा। लेकिन इस प्रेम की लहर ने इससे भी बड़ा एक काम एक और किया। व्यावसायिक प्रसार के कारण आधुनिक युग में मनुष्य मनुष्य के बीच जो मानवीय संबंध के स्थान पर व्यावसायिक संबंध स्थापित हो गए थे, उनकी शुष्कता को मिटाने में इस प्रेम भावना ने बहुत बड़ा काम किया। कृषि सभ्यता पर आधारित पुरानी समाज व्यवस्था में लोगों के बीच अधिक मानवीय संबंध थे। गाँव में चाहे कोई शूद्र हो अथवा तेली, बनिया और अहिर या क्षत्रिय ब्राह्मण, धनी हो या गरीब, लेकिन शादी ब्याह अथवा जन्म मरण में प्रायः एक दूसरे के साथ सहयोग करने की परंपरा रही है। उत्सव समारोह में भी लोग प्रायः भेदभाव भूल कर भाग लेते रहे। लेन देन में भी एक प्रकार की उदारता रही। विद्यादान दान ही रहा है, उसे बेचने खरीदने की चीज नहीं समझा जाता था। लेकिन आधुनिक औद्योगिक क्रांति ने धीरे धीरे उन पुराने सामाजिक संबंधों को तोड़ना शुरू कर दिया। व्यावसायिकता की जड़ जमने लगी। सभी लोग रुपये पैसे की भाषा में सोचने लगे। लोगों की दृष्टि उपयोगितावादी हो गई। स्वार्थों के संघर्ष होने लगे। जिंदगी में होड़ बढ़ गई। सहज और मंथर जीवनचर्या समाप्त हो गई। ऐसे युग में प्रेम की अमृतवाणी की बहुत बड़ी आवश्यकता है। छायावादी कवि ने अपने प्रेम गीतों द्वारा इस आवश्यकता की पूर्ति की। इसी आशय की एक कविता स्वामी विवेकानंद की सखार प्रति है, जिसका अनुवाद निराला ने उन्हीं दिनों 1926 में सखा के प्रति शीर्षक से किया था। उस कवि का संदेश यह है कि प्रेम भवंत सब स्वार्थ मरिंता अनल कुंड में भस्मीकृत कर दो सोचो भिक्षुक हृदय सदा का ही है सुख वर्जित। और कृपा के पात्र हुए भी तो क्या फल तुम बारंबार सोचो तो न फेर कर लो यदि हो अंतर में कुछ भी प्यार। अंतस्थल के अधिकारी तुम सिंध प्रेम का भरा अपार अंतर में जो जो चाहे हो बिंदु सिंधु उसका निसार। ब्रह्म और परमाणु कीट तक सब भूतों का है आधार एक प्रेम में प्रिय इन सबके चरणों में दो तन मनवार। इस उदात्त भूमि पर आकर प्रेम मानवतावाद का पर्याय हो जाता है। यहाँ से वह व्यापक बंधुत्व का संदेश सुनाता है। लेकिन जिस प्रकार प्रज्ञा का वही सत्य स्वरूप कभी हृदय में अपार प्रणय बनता है, कभी लोचनों में अनूप लावण्य बनता है और कभी लोक सेवा में अभिकार शिव, उसी प्रकार छायावाद युग की व्यापक प्रेम भावना ने भी विविध सामाजिक संबंधों के अनुसार भिन्न भिन्न रूप धारण किया। स्त्री पुरुष के बीच प्रणय संबंध के क्षेत्र में छायावाद ने परस्पर सहकारिता तथा स्वच्छंदता का सूत्रपात किया। प्रणय संबंधी कविताएं तो पहले से ही होती आ रही हैं, लेकिन छायावादी कविता में प्रणय का जो आवेगपूर्ण तथा प्रगाढ़ रूप मिलता है वह अनूठा है। इसका मुख्य कारण यह है कि छायावादी प्रणय भावना स्त्री और पुरुष दोनों के पारस्परिक मानस द्वंद्व का परिणाम है। इस युग में स्त्री स्वातंत्र के कारण दोनों पक्षों को मुक्त हृदय से भाव विनिमय तथा साहचर्य स्थापित करने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे प्रेम के पूर्ण विकास तथा उन्मुक्त अभिव्यक्ति के लिए द्वार खुल गया। एक ही कोटि की दो स्वतंत्र सत्ताओं के योग से प्रेम का अधिक गूढ़ और समृद्ध होना स्वाभाविक है। मध्ययुग में यह सुविधा प्राप्त न थी। नारी को वह स्वतंत्रता प्राप्त न थी जो पुरुष को थी। फलतः पुरुष के लिए नारी प्रेम की वस्तु मात्र थी। पुरुष के लिए नारी की इच्छाओं और आकांक्षाओं को उसने महत्व देना भी चाहा तो स्वयं नारी में वह सामर्थ्य नहीं था जो खुलकर अपने को व्यक्त कर सके, क्योंकि सदियों पुराने बंदी जीवन ने नारी में नारी वास्तविक नारीत्व को कुंठित कर दिया था। इस तरह नारी का बंदी बनाकर पुरुष ने अपने आनंद की सीमा छोटी कर ली। प्रेम के पूर्ण विकास के लिए जो दोनों पक्षों की समानता प्रबुद्धता अपेक्षित मानी गई उसका रीतिकाल में अभाव दिखाई पड़ता है, क्योंकि दोनों पक्षों में से एक पक्ष दास था। छायावाद युग में यह असमानता काफ़ी दूर हो गई। नई पीढ़ी के युवकों और युवतियों को शिक्षा के नए वातावरण में मिलने का सुयोग प्राप्त हुआ। एक को दूसरे का नया परिचय मिला। साहचर्य ने भाव विनिमय को सुलभ बनाया। दो हृदयों के पारस्परिक घात प्रतिघात से प्रणय संबंध के जटिल ताने बाने बुन उठे। इस अंत योग से प्रणय के क्षेत्र में एक नए अध्याय का आरंभ हुआ। प्रसाद की कामायनी में इस नूतन परिचय तथा प्रणय के सूत्रपात का अत्यंत सुंदर चित्रण मिलता है। मनु और श्रद्धा का मिलन जिस गंभीर ढंग से होता है और जिस प्रकार दोनों एक दूसरे को अपना परिचय देते हुए क्रमशः हृदय खोलते चले जाते हैं वह देखने योग्य है। यह प्रथम परिचय सूर्य के किशोर कृष्ण और राधा के प्रथम मिलन की शैशव सरलता से अधिक गंभीर है तथा तुलसी के राम और सीता के लता अंतराल दर्शन से अधिक स्वच्छंद है। मनु तरंगों से फेंकी हुई मड़ी के समान संस्कृत जलनिधि के तीर पर पड़े हुए हैं और उनके इस मधुर एकाकी रूप को देखकर श्रद्धा प्रश्न भरा गीत गाते हुए प्रवेश करती है। मनु को एक सहसा झटका लगता है और वे लुटे से उस रूप राशि की ओर निरखने लगते हैं। उस रूप में न जाने कौन सा विश्वासदायक प्रभाव है जो मनु विश्रब्द भाव से उसे अपने हृदय की संपूर्ण निराशा खोल कर उसके सामने रख देते हैं। इसके साथ ही वे उस वसंत के दूत का भी परिचय पूछते हैं। श्रद्धा भी सहज भाव से अपना ललित कला प्रेम उसी के कारण इस ओर आने का प्रयोजन कर जाती है। न कोई छिपाव न कोई दुराव, जितने निर्जन एकांत और उन्मुक्त वातावरण में उनका मिलन होता है उतना ही एकाकी और उन्मुक्त उनका हृदय भी है। प्रथम परिचय में श्रद्धा मन को नारी सुलभ ढांढस बढ़ाती है और यहाँ तक कि उनकी निराशा को दूर करने के लिए आत्मसमर्पण भी कर देती है। संपूर्ण क्रिया भाव प्रबलता से प्रेरित आवेग द्वारा चालित होती है। फलस्वरूप श्रद्धा मनु के पास अतिथि की तरह रहने लगती है। इस परिचय प्रथम परिचय में धीरे धीरे आश्चर्यजनक प्रगाढ़ता आने लगती है, फिर भी एक दूसरे के प्रति एक तरह का रहस्य अनुभव होता है। परस्पर समीप आते हुए भी कहीं कुछ कभी मालूम होती है। जितना ही एक दूसरे को जानते जाते हैं उतने ही अज्ञेय प्रतीत होते हैं। सामान्य परिचय में एक नए ढंग के रागात्मक कुतूहल का उदय होता है। नित्य परिचित हो रहे तब भी रहा कुछ शेष, गूढ़ अंतर का छिपा रहता रहस्य अविशेष। दूर जैसे सघन वनपथ अंत का आलोक, सतत होता जा रहा हो नयन की गतिरोक। यह रहस्य मध्युगीन और प्राचीन कवि के लिए सर्वथा अपरिचित है। इस तरह की गूढ़ता दुष्यंत और शकुंतला के प्रथम परिचय में भी नहीं। यह आधुनिक युग के विकसित मन की क्रिया है और इसीलिए आधुनिक युवकों और युवतियों के प्रणय संबंध अथवा परिचय के विकास क्रम में ही मिल सकती है। यह रहस्य परिचय की प्रगाढ़ता का सूचक है। धीरे धीरे इसमें और भी प्रगाढ़ता आती है और एक राका निशा में श्रद्धा को अपने समीप पाकर मन पूछ बैठते हैं, कौन हो तुम खिंचते जो मुझे अपनी ओर, और ललचाते स्वयं हटते उधर की ओर। ज्योत्सना निर्झर ठहरती ही नहीं यह आँख, तुम्हें कुछ पहचानने की खो गई सी साख। इस भावावेगपूर्ण प्रश्न का भला क्या उत्तर होगा? ऐसे प्रश्नों का उत्तर कई शब्दों में दिया जाता है, और फिर ये प्रश्न भी तो नहीं होते, यह तो एक प्रकार का मुखर चिंतन अथवा स्वगत संलाप है। फलतः श्रद्धा ने हंसकर इस प्रश्न को टाल दिया और कहा कि मैं अतिथि हूँ बस, इससे अधिक परिचय व्यर्थ है। लेकिन इसके लिए तुम आज उद्विग्न क्यों हो? पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था। और फिर उसने मनु का ध्यान जलद खंड पर समासीन विदु की ओर आकर्षित किया, और इस संकेत से ही नारी ने जैसा सारा उत्तर दे दिया, मनु अपने आवेग को संभाल नहीं पा रहे थे। कहा मनु ने, तुम्हें देखा अतिथि कितनी बार, किंतु इतने तो न थे तुम दबे छवि के भार। क्यों, उन्हें क्या पता कि सौंदर्य स्नेह से उत्पन्न होता है और फिर बदलने में वह स्नेह उत्पन्न करता है। स्नेह और सौंदर्य दोनों की उत्पत्ति द्वंद्वात्मक प्रक्रिया से होती है। इसके बाद प्रसाद ने प्रणय लुब्ध मनु के आविष्ट मन का जो चित्रण किया है वह आधुनिक कवि के लिए ही संभव था। मानस मंथन का यह चित्र पूर्ववर्ती साहित्य में शायद ही कहीं मिले। मनु को मदिर घन में वासना की गुस्ते से प्रतीत होने लगी। उनकी चेतना की परिधि चक्राकार घूमने लगा। उनकी धमनियों में वेदना सा रक्त का संचार होने लगा। नारी मूर्ति उन्हें साकार विश्व माया कुहक से प्रतीत होने लगी। उसे वे प्राण सत्ता के मनोहर भेद से सुकुमार समझने लगे। वक्ष में मधुर ज्वाला धधक उठी और वात चक्र समान कुछ था बद्धता आवेश उत्तेजना उद्भ्रांत चिंगारियां छूट रही थी और चांदनी ऐसी मालूम पड़ रही थी जैसे अनंत सतत स्वच्छ मधुर कण बरस रहा हो। वासना का ऐसा उद्दाम किंतु अश्लीलता वर्जित चित्रण विरल है। अशरीरी होने के साथ ही यह पर्याप्त मानसन है। इसकी सारी विशेषता भावावेग में नहीं थे। निराला ने भी इस नवीन प्रणयानुभूति का चित्रण किया। प्रथम दर्शन की अनुभूति को ही सबसे पहले में सायंकाल युद्ध से लौटे हुए राम के निराशाच्छन्न मन में सहसा पृथ्वी तनया की कुमारिका छवि विद्युत के समान कौध उठती है। और फिर याद आया उपवन विदेह का प्रथम स्नेह का लता अंतराल मिलन, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण, पलकों का नव पलकों पर पद्मोत्थान पतन, कांपते हुए किसने झरते पराग समुदय, गाते खग नव जीवन परिचय तरु मलय वलय, ज्योति प्रपात स्वर्गीय ज्ञात छवि प्रथम स्वीय, जानकी नयन कमनीय प्रथम कंपन तुरीय। इसी प्रसंग का वर्णन तुलसीदास ने किया है, परंतु निराला के चित्रण में जो मानसिक उथल पुथल तथा प्रेम के जिस विश्वव्यापी प्रभाव की अभिव्यक्ति हुई है वह तुलसीदास की सीधी सादी व्यंजना में कहा। तुलसी की सीता को जब सखियां लता ओर से श्यामल गौर किशोर को लखाती हैं तो वह एकटक रघुपति की शोभा देखती ही रह जाती हैं। और फिर थोड़ी देर के बाद लोचन मग राम है उर आनी, दीने पलक कपाट सयानी। लेकिन निराला के यहाँ तो नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण हो जाता है। नयनों का यह गोपन संभाषण और फिर पलकों का उत्थान पतन प्रेम की इस दशा में निराला के राम को संपूर्ण प्रकृति प्रेमोन्मत दिखाई पड़ती है। किसलय कांप रहे हैं, फूलों से पराग झड़ रहे हैं, खग नए जीवन के परिचय का गीत गा रहे हैं, और तरुवलय मलय पवन से वलयित हो उठे हैं। लगता है कि स्वर्गीय ज्योति का प्रपात झर रहा है। प्रणयानुभूति की यह भावाकुलता, अलौकिकता तथा व्यापकता तुलसी के उस वर्णन में कहाँ। वहाँ तो सीता को देश दुनिया की खबर ही नहीं। एक सखी के व्यंग वचन पर जब उनकी आंखें खुलती हैं तो तुरंत भय विलंब मातु भय मानी वे घर के लिए चल पड़ती हैं। और उन सबसे बढ़कर जो निराला के जानकी की कमरीय नैनों के प्रथम कंपन की तुरिया अवस्था है वह तुलसी के दीने पलक कपाट से आने की सूक्ष्म व्याख्या है। महाकवि की इस सीधी अभिव्यक्ति की गहनता का उद्घाटन है। तुलसीदास और निराला के इन चित्रों का अंतर दो युगों का अंतर है। पिछले 300 वर्षों में मानव के मन का जो विकास हो गया है उसकी छाप निराला की कविता में स्पष्ट है। आधुनिक प्रणयानुभूति की यही बारीकियां हैं जो पुरानी कविता से आधुनिक कविता को अलग करके उसकी विशेषता प्रकट करती है। प्रणय की प्रथम अनुभूति का चित्रण निराला की अन्य कविताओं में भी किया गया, पर अनामिका की रेखा कविता इनमें अग्रणी है। इसमें उस रेखा का चित्रण है जो यौवन के तीर पर सौंदर्य स्रोत के पहली बार आने पर खींची थी। किशोरावस्था बीतते बीतते और युवावस्था चढ़ते समय मन में जितने प्रकार के भाव उठते हैं उनका सूक्ष्मातिसूक्ष्म चित्रण यहाँ हुआ है। उस समय प्रीति की धारा संस्कृत की वाहिनी की तरह आती हुई मालूम होती है। पता नहीं चलता कि यह विशाल वाहिनी कहाँ किस दूर देश से चली आ रही है। एकदम अज्ञात और नीरव उसके चरण चिन्ह भी नहीं दिखते युवा हृदय अनायास ही इस वाहिनी के वेग में आ जाता है और देखते देखते अपने सीमा भूल कर अकुल का साथी हो जाता है। मन में एक विलक्षण अपनाव उमड़ पड़ता है जिसमें प्रेम भाव बिना भाषा का तान तरल कंपन व बिना शब्द अर्थ की परिचय बिना भी यदि कोई कुछ कहता तो उसे हृदय अपना लेता है। प्रकृति में भी अपनी ही भावना की चिर पोषित छायाएं दिखाई पड़ती हैं। जीवन यौवन के इस प्रथम उत्थान में चारों ओर जीवन ही जीवन मिलता मालूम होता है। प्रकृति ऐसी मालूम होती है जैसे विस्मृति में कोई स्मृति खुलाई हो। मन की यह वह स्थिति है जब हृदय के मंच पर सौंदर्य की कोई प्रतिमा नहीं आई है। उस विपुल अज्ञान में भी युवक के प्राण निरुद्देश्य प्राणों को खोजते रहते हैं। अभी हृदय ने किसी आगंतुक के लिए स्वागत की वंदना हिसी की है। अभी तक उसे ऐसी कोई एक भी मूर्ति नहीं मिली है जिसकी अधरों में विवलता, कंठ में वेदना, हृदय में मृदुता, हाथों में निपुणता, चरणों में शिथिलता तथा उत्सुकता, वेदना, भीति, नयनों की नयनों में से मौन प्रार्थना, सिंचन, सुहाग, प्रेम आदि सब कुछ एकत्र ही मिल जाए। फिर भी अनायास ही इंद्रिय बोध जाग रहा है। सब कुछ चेतन प्रतीत होता है। स्पर्श में रोमांच, अनुभव रूप में परिचय, गंध में सुख, रस में मज्जन का आनंद और शब्दों में अलंकार, ये सभी अनुभूतियाँ विकसित हो गई हैं। रेखा में यदि पुरुष के युवा हृदय की पहली अनुभूति अभिव्यक्त हुई है तो प्रेयसी में नारी हृदय की। युवती अनुभव करती है कि जिस समय तारुण्य की वह प्रथम तरंग अंग अंग को घेर कर लहर उठती है वह अपने तरुतन को घेरने वाले ज्योतिर्मय लता के समान प्रतीत होने लगती है। वह चक्राकार कलरव तरंगों के मध्य उठी हुई उर्वशी सी मालूम होती है। ऐसे ही समय उसे कृतविद्य प्रिय का साक्षात्कार होता है। यह मिलना ऐसा ही है जैसे रस सृष्टि को मूक शुचि दृष्टि मिली हो। फलस्वरूप समष्टि में फैला मन खींचकर स्तब्ध हो गया और दूर थी खींचकर समीप जो मैं हुई अपने ही दृष्टि में जो था समीप विश्व दूर दूर तर दिखा। दो ज्योति छवियां मिली और नीलिमा शून्य से जैसे बंध कर रह गई है वैसे ही प्रिया प्रिय से बंध गई। आंखों में जाने कैसा निरंजन अंजन लग गया कि प्रिय से भी बंधी हुई वह पृथ्वी को देखने लगे। उधर प्रिय ने जिस दृष्टि से उसे देखा उसमें ऐसी अपूर्व पवित्रता का अनुभव हुआ जैसे सजल शिशिर धौत पुष्प ज्यों प्रात में देखता है एकटक किरण कुमारी को। अपने प्रति युवती को यह स्वानुभूति तथा प्रिय के दृष्टिपात में पवित्रता की अनुभूति ये दोनों ही बातें अभूतपूर्व हैं। इस प्रकार की स्वानुभूति आधुनिक युग में ही संभव हो सकती थी। स्त्री पुरुष के प्रणय संबंध का एक दूसरा ही रूप पंत के यहाँ दिखाई पड़ता है। इसमें न तो प्रसाद किसी मधुचर्या है और न निराला का सा उद्दाम आवेग। पंत के प्रणय चित्रण की विशेषता उनकी सहसव सरलता में है। इसमें न तो मधु किसी प्रगाढ़ मिठास है न ज्वार का उफान। इसमें छोटे से छोटे पहाड़ी झरने की सी तरलता है। उच्छ्वास आंसू और ग्रंथि की सरल बालिका को जिस भोलेपन के साथ पंत ने स्मरण किया है, उसके सख्य संबंध को जिस सहजता से प्रकट किया है और उसके विक्षोभ में बच्चे की तरह जिस तरह सारा हृदय खोल कर रख दिया है, वह बेजोड़ है। इस सख्य भाव से पुराने सखी संप्रदाय के प्रणय भावना की कोई तुलना नहीं। पंत के उच्छ्वास में किसी परिणति विरही का ताप नहीं, बल्कि अनुभवहीन युवक की प्रथम विरह व्यथा का उद्गार है। यह उच्छ्वास बाल बादल की तरह अभी अभी उठा है, साथ ही वह सरल और अस्फुट भी है। अभी उसे अपनी व्यथा का पूरा पूरा बोध भी नहीं है, इसीलिए उसमें युवा सुलभ प्रगल्भता भी नहीं है, बल्कि उसके स्थान पर कैशोर संकोच है। यही वजह है कि यह प्रणय अस्फुट रूप में अभिव्यक्त हुआ है। इस प्रेम की सरलता पर कवि इतना मुग्ध है कि उसके अनुसार शैशव ही है एक स्नेह की वस्तु सरल कमनीय। यह सारा प्रेम व्यापार आदि से अंत तक लड़कपन का खिलवाड़ ही बना रहा। प्रेमी को उसकी प्रिया ने जो ठेस पहुंचाई, वह भी एक तरह के लड़कपन वश ही। बालकों का सा मारा हाथ कर दिए विकल हृदय के तार। इसीलिए वह प्रेमी भी बालकों की तरह जार जार रोता है। बालकों सा ही तो मैं हाय याद कर रोता हूँ अनजान। और बालकों के सुरदन में भी सहज ही प्रेम की ऐसी ऐसी सूक्ष्म अनुभूतियाँ व्यक्त हो उठी हैं जो बड़े बड़े प्रौण काव्यों में भी दुर्लभ हैं। जुगनियों से उड़ मेरे प्राण, खोजते हैं तब तुम्हें निदान। पूर्व सुधी सहसा जब सुकुमारी, सरल सुख से सुखकर सुर में, तुम्हारी भोली बातें कभी दोहराती हैं उर में। इन पंक्तियों में जो अतीत की बात को याद कर मन ही मन दोहराने की विमूढ़ता है, और अगन से मेरे पुलकित प्राण सहस्त्रों सहस स्वरों में कूक तुम्हारे करते हैं आवाह। में जो विक्षिप्त हृदय की अस्थिरता व्यक्त हुई है, वह कम कविताओं में मिलेगी। पंत ने अत्यंत भोलेपन के साथ प्रणय की जो गूढ़ गहन अनुभूतियां शब्द में उतार दी हैं, उनकी विशेषता ऐसी बात में है कि अनुभव में जो सहज गम्य है, लेकिन अभिव्यक्ति के प्रयास में भी कितनी दुर्गम है, इसे कोई रचयिता ही समझ सकता है। छायावादी प्रेम भावना की एक विशेषता उसका भावोवेग है। मध्ययुगीन कवि प्रेम की व्यंजना में बहुत कुछ मर्यादित और मितव्ययी थे। निस्संदेह वे कभी कभी आंसुओं की गंगा जमुना बहा देते थे, लेकिन उन आंसुओं के बावजूद मध्ययुग के नायक अथवा नायिका का हृदय बहुत कम खुलता था। मध्ययुग का नायक खूब लंबी लंबी आहें भी भरता था, शिकवे भी करता था, छाते भी पीटता था और सिर भी धुनता था, क्योंकि इतना सारा व्यायाम करने पर भी अपने हृदय के भावों को व्यक्त करने के प्रति उदासीन था। इसके विपरीत छायावादी कवि की प्रणयानुभूति अनुभवों की दृष्टि से न कुछ होते हुए भी भावों की दृष्टि से समृद्ध थी। छायावादी कवि शारीरिक चेष्टाएं तो कम करता था, परंतु अपना हृदय खोल कर रख देने में कसर नहीं रहने देता था, और उसे मानव सभ्यता के विकास का ही परिणाम समझना चाहिए। मजनू तो तब भी होते थे, लेकिन मजनू की तरह अपने जुनून को जाहिर जहान करते नहीं फिरते थे। छायावाद की इस नवीन प्रणय भावना ने प्रेम की आलंबन सौंदर्य का मानदंड ही बदल दिया। जिस प्रणय संबंध में भाव की प्रधानता हो, उसमें स्थूल अंग यष्टि को महत्व मिलना असंभव है। भावावेग भी मनुष्य साक्षात रूप को भी अपनी कल्पना से रंग लेता है, और वह प्रत्यक्ष रूप से भी किसी परोक्ष सौंदर्य के दर्शन करता है। छायावादी कवि ने नारी की पुनः सृष्टि की। उसने विधाता की सृष्टि को अपनी कल्पना के योग से नवीन रूप दे डाला। इस तरह छायावादी कवि की नारी विधाता की सृष्टि से कई अधिक कवि सृष्टि है। इसीलिए छायावादी नारी आधी मानवी है और आधी कल्पना। इस बात को रविंद्रनाथ ने चैताली की मानसिक कविता में बहुत अच्छी तरह व्यक्त किया है। शुद्ध विधाता सृष्टि न तुम्हें नारी, पुरुष गणेश तोरे सौंदर्य संचारी। आपन अंतर हते वसी कविगन, सोनार उपमा सूत्रे बुरिछे वसन। सपिया तुमार परिनूतन महिमा, अमर करिछे शिल्पी तुमार प्रतिमा। अर्धिक मानवी तुम्हें अर्धिक कल्पना। नारी सौंदर्य के चित्र में उपमाओं की राशि तो पहले के कवियों ने ही भी लुटाई है, लेकिन छायावादी कवियों ने उद्भुत कल्पना शक्ति के द्वारा नारी का जो भव्य रूप खड़ा किया है, उसके सामने पुराने कवियों की रूढ़ उपमाओं से अलंकृत नारी तुच्छ है। प्रसाद की श्रद्धा, पंत के अप्सरा और निराला के रत्नावली के सामने जयश्री के पद्मावती, सूर्य की राधा, तुलसी की सीता और रीतिवादी कवियों के समस्त नायिकाएं फीकी पड़ जाएंगी। मनु की आंखों के सामने श्रद्धा अभिराम इंद्रजाल प्रतीत हुई। उसका कांत वपु गांधार देश के नील और मसरण रोम वाले मेषों के चर्म से ढका हुआ था। श्रद्धा के नील परिधान के बीच जो अधखुला अंग खुल रहा था उसे देखकर ऐसा मालूम होता था ऐसे मेघों के वन में बिजली का फूल खिला हो। उसके मुख की कांति को देखकर ऐसा लगता था कि इंद्रलील के लघु श्रृंग को फोड़कर ज्वालामुखी धधक रहा है। और श्रद्धा की मोहिनी मुस्कान तो अद्भुत थी। वह मुस्कान क्या थी, मानो रक्त किसले पर अरुण की एक अलसाई हुई किंतु अम्लान किरण पड़ी हो और संपूर्ण अंग यष्टि जैसे कुसुम कानन अंचल में मंद पवन प्रेरित सौरभ साकार रचित परमाणु पराग शरीर खड़ा होले मधु का आधार। जो अंग यष्टि हवा में हिलते हुए पराग के परमाणुओं के पुंज की तरह प्रतीत हो उसकी सूक्ष्मता सुकुमारता और सुरभिमयता का अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है। पंत की अप्सरा तो निखिल कल्पनामयी ही है। उषा अपनी पद लालिमा है, शशि स्मित है, उड़कंपन उर स्पंदन है, चपल वीचियां पद संचार हैं, विकच दल ही हृदय के भाव हैं और इस तरह वह अपने आप जगत में प्रथम सौंदर्य पद्म से विकसित हुई है। इसका वर्णन करते करते अंत में कवि कहता है कि अप्सरा कोई एक नारी मूर्ति नहीं है बल्कि नारी सौंदर्य संबंधी समस्त संपदा का पूंजीभूत रूप है जो प्रत्येक युग में नवीन रूप रच रच कर आया करती है और जिसके निर्माण में संपूर्ण मानव जाति की पूरी प्रतिभा लग गई है। निखिल विश्व ने निज गौरव महिमा सुखमा कर दान, निज अपलक उर के सपनों से प्रतिमा कर निर्माण, पल पल का विस्मय दिश दिश की प्रतिभा कर परिधान, तुम्हें कल्पना और रहस्य में छिपा दिया अनजान। पूर्ववर्ती कवि इस प्रकार के शाश्वत युगव्यापी विश्वव्यापी तथा कल्पना व नारी सौंदर्य की दृष्टि सृष्टि करने में असमर्थ थे। नारी सौंदर्य की स्थूल शारीरिकता तक ही सीमित रहने के कारण वे भीतर भीतर नारी रूप की नश्वरता के प्रति इतने अधिक सतर्क थे कि उनके लिए किसी शाश्वत सार्वभौम नारी रूप की कल्पना असंभव थी। सौंदर्य की अनश्वरता का विश्वासी ही अप्सरा की कल्पना कर सकता है। वस्तुतः आधुनिक नारी ने अपनी शक्ति का ऐसा परिचय दिया कि पुरुष के लिए वह रहस्यमय शक्ति प्रतीत होने लगी। पुरुष उसकी शक्ति से इतना अभिभूत हो उठा कि उसके बाह्य रूप की सीमा को भूलकर उसमें किसी अतीन्द्रिय सौंदर्य का अनुभव करने लगा। आधुनिक नारी ने पुरुष की संस्कारबद्ध वासना को ऐसा धक्का दिया कि उसकी आंखों में बसी हुई प्राचीन नारी प्रतिमा चूर चूर हो गई और उसके स्थान पर एक दिव्य रमणीय मूर्ति प्रतिष्ठित हो गई। निराला के तुलसीदास का कामातुर रूप देखकर रत्नावली में ऐसे ही आधुनिक नारी जाग उठी। जागी जोगिनी अरूप लग्न व खड़ी शीर्ण प्रिय भाव मग्न रूप निरूपमिता। और अपने विराट रूप में जब रत्नावली ने तुलसीदास को धिक्कारा तो कवि की आंखों में नारी का और ही रूप सजीव हो उठा। देखा शारदा नील वसना है सम्मुख स्वयं श्रेष्ठ रचना, जीवन समीर वसना वरदात्री। स्पष्ट यह अनुभूति आधुनिक तुलसीदास की है, प्राचीन की नहीं। नारी को स्वयं शारदा के रूप में देखना मध्ययुगीन कवि के लिए असंभव था। अब तक कवि ने नारी की जिस वासना मूर्ति की धारणा बना रखी थी वह नारी के लिए ही नहीं बल्कि स्वयं पुरुष के लिए भी बंधन थी। परंतु नारी के उन्मुक्त विराट रूप के प्रतिष्ठित होते ही नारी के साथ साथ पुरुष भी मुक्त हो गया और इस तरह दोनों की मुक्ति से जीवन का नवीन संगीत फूट पड़ा। मुक्त होते ही नारी पुरुष के हृदय की मुक्ति रागिनी बनकर बह निकली। जिस कलिका में कवि रहा बंद वह आज उसी में खुली बंद भारतीय रूप में सुरभि छंद निष्प्रभ श्रय। सौंदर्य संबंधी धारणा को बदलते ही छायावादी कवि ने नारी के स्थूल सौंदर्य की अपेक्षा उसके बाहर सौंदर्य की ओर ध्यान दिया। रीतिवादी कवि को भौहें कमान मालूम होती थी, आंखें तीर और हंसी जहर, लेकिन छायावादी कवि की दृष्टि में सरल भौहों में था आकाश, आश्म शैशव का संसार, तुम्हारी आंखों में करवास प्रेम ने पाया था आकार। इतना ही नहीं, छायावादी कवि के अनुसार नारी के कपोलों में उर के मृदु भाव हैं, सरल संकेतों में संकोच है और उसके उर में उषा का आवास है तथा चांदनी का स्वभाव में वास, विचारों में बच्चों की सांस। स्वाभाविक है कि ऐसा सौंदर्य केवल कामोत्तेजना ही पैदा नहीं कर सकता। इस सौंदर्य के संपर्क में जो लहिए संग सुजन हो, धरक नरक हो की जैसी बात कह सकने का साहस नहीं हो सकता। बात कहना तो दूर, ऐसा कुत्सित विचार भी मन में नहीं उठ सकता। इसीलिए पंत कहते हैं, तुम्हारे छूने में था प्राण, संग में पावन गंगा स्नान। जिस कवि को नारी के संग में पावन गंगा स्नान की सी अनुभूति है, उसका प्रेम यदि गंगा जल की धार की तरह पावन हो तो क्या आश्चर्य। लेकिन खेद की बूढ़ी मटमैली आंखों को वह मदिरा मालूम हो। छायावाद में सौंदर्य का चित्रण जितना आदर्शवादी हुआ, प्रेम की अभिव्यक्ति भी उतने ही आदर्शवादी धरातल पर हुई। दोनों को ही भूमिका अत्यंत उदात्त है। द्विवेदी युग की शुद्धिवादिता भी उस ऊंचाई को नहीं छू सकती। उस उदात्त वृत्ति ने ही छायावादी कवि को ऐसी सूक्ष्म सौंदर्य दृष्टि दी कि उसने नारी सौंदर्य के चटकीले रंगों की जगह सूक्ष्म रेखाओं और वर्ण छायाओं को भी उरेहने में सफलता प्राप्त की। इसी उदात्त वृत्ति के कारण छायावादी कवि को प्रेम की बारीक से बारीक अनुभूतियों को अभिव्यक्त करने की शक्ति मिल गई। साथ ही वह प्रेम का ऊंचा आदर्श भी प्रतिष्ठित कर सका। प्रेम की इस उदात्त वृत्ति ने आधुनिक कवि को वह शक्ति दी कि उसने मार्ग में विघ्न स्वरूप आने वाले धन और जाति संबंधी भेदभाव को भी तोड़ने का प्रयत्न किया। प्रसाद के प्रेम पथिक की पुतली अथवा चमेली अनचाहे पति की कृत दासी होकर किसी तरह जीवन व्यतीत करती रही, किंतु पति के मर जाने पर उसने तमाम बंधनों को तोड़कर प्रेम की पर्णकुटी बसा ली और वहीं से पूर्व प्रेमी का साहचर्य प्राप्त हुआ। जिस समय प्रसाद ने प्रेम पथिक लिखा, उस समय असंभव भी न था कि कोई नारी अपने वैवाहिक जीवन से असंतुष्ट होकर विवाह बंधन तोड़ने की कल्पना कर सके। फिर भी इस रचना में स्वच्छंद प्रेम की जो अभिव्यक्त हुई है, वह आधुनिक प्रेम भावना की पहली झांकी है। अपने बाल सखा को पति के रूप में प्राप्त करने की ललक चमेली के मन में कितनी थी, यह उसके इन शब्दों में मालूम होती है। पुतली ब्याही जावेगी जिससे वह परिचित कभी नहीं, यही ध्यान था उठता मन में, हाय प्राण प्रिय क्या होगा। किंतु कौन सुनता उस सहनाई में हततंत्री झनकार, जो नौबत खाने में मस्ती थी अपनी गहरी धुन में। रूखा शीशा जो टूटी तो सब कोई सुन पाता है, कुचला जाना हृदय कुसुम का किसे सुनाई पड़ता है। स्वच्छंद प्रेम के लिए आधुनिक स्त्री पुरुष तड़पते ही रहे, मगर पुरानी रूढ़ियों की चट्टानों ने जुम्बिश न ली। लोग व्यथा प्रेम पथक की चमेली को हुई, वहीं ग्रंथि के युवक को भी हुई। जिस लड़की के साथ उसका साहचर्य जन्य प्रेम विकसित हुआ, उसके साथ विवाह न होकर किसी और के साथ हो गया। यह ग्रंथि बंधन को तो अन्यत्र हुआ, किंतु युवक हृदय में एक ग्रंथि पड़ गई जो समय समय पर खटकती रही। ग्रंथि में वृद्ध अनुभव की सिकुड़ और ज्ञान जृंभा को जो खरी खोटी सुनाई गई है, उससे रूढ़ियों के प्रति आधुनिक युवक हृदय का कोष पूर्णतः प्रकट होता है। दूसरी ओर ग्रंथि में टूटे हुए हृदय का जो रुदन व्यक्त हुआ है, उससे स्वच्छंद प्रेम की मार्मिकता का पता चलता है। प्रेम की यह स्वच्छंदता पूर्ववर्ती काव्य में दुर्लभ है। चिर विद्रोही निराला ने अपनी रचनाओं में प्रेम के मार्ग में बाधक जाति भेद को तोड़ डाला है। क्या हुआ जो यह दीवार वास्तविक जीवन में नहीं ढहती। कवि के पास कल्पना का भी तो एक अपना लोक है, वहां वह जो चाहे कर सकता है। निराला की जो प्रेयसी एक बार कुल मान ग्रंथि में बधकर चली गई थी, वह कुछ दिनों बाद अपने पूर्व प्रेमी का आह्वान सुनकर मुक्त हो साथ चल देती है, क्योंकि उसके अनुसार दोनों हम भिन्न वर्ण भिन्न जाति भिन्न रूप भिन्न धर्म भाव पर केवल अपनाओं से प्राणों से एक थे। परंतु यह विद्रोह मानसिक ही रहा। यही वजह है कि शाहवादी कविता में नारी के पत्नी रूप का सर्वथा अभाव है। शाहवादी कवि के लिए पत्नी सदैव भावी ही रही, वर्तमान न हो सकी। ग्रंथि के कवि पंथ की प्रणय भावना भावी पत्नी की कल्पना में ही व्यक्त हो सकी। वस्तुत छायावाद के स्वच्छंद प्रेम का आलंबन प्रेयसी ही रही और आजीवन में प्रेयसी ही बनी रही। पत्नी के रूप में उसे प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त न हो सका। इसीलिए छायावाद की अधिकांश कविताओं का नारी सौंदर्य अशरीरी और हवाई है तथा प्रेम भावना भी कल्पनावासी तथा अतृप्तिपरक है। पंथ की रचनाओं में इस प्रवृत्ति की प्रधानता है। उसके विपरीत प्रसाद में प्रेम की तृप्ति का वर्णन कहीं कहीं मिल जाता है, और निराला तो मुख्यतः स्वस्थ मानसलता और तृप्ति के ही कवि हैं। चूहे की कली से लेकर गीतिका के गीतों तक सर्वत्र निराला ने प्रेम की परिणति तृप्ति में ही दिखाई थी। यदि जूही की कली हीर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली हील रंग प्यारे संग। तो गीतिका में भी स्पर्श से लाज लगी गीत के अंत तक आते आते मधुर स्नेह के मेह प्रखरतर बरस गए रस निर्झर झर झर उगा अमर अंकुर उर भीतर संस्कृति भीत जग भगी। गीतिका के अनेक गीत कवि प्रिया मनोहरा के रंग से रंजित हैं और परिमल तो पुष्प द्वार पर खड़े गुंजार करने वाले मधुलुप्त भ्रमर का प्रेरणास्रोत ही है। कुल मिलाकर छायावाद में नारी के प्रेयसी रूप की ही प्रधानता दिखाई पड़ती है। माँ बहन और कन्या के रूप दबे ही रह गए। निराला जैसे हर जगह अपवाद हैं वैसे यहाँ भी। सरोज स्मृति कविता में उन्होंने अपनी कन्या सरोज का चित्रण करके आलोचकों को पहले से ही छायावाद के विषय में सामान्य आरोप करते समय आगाह कर दिया है। सरोज स्मृति में प्रेम के जिस वात्सल्य भाव की अभिव्यंजना हुई है वह छायावाद में ही नहीं बल्कि संपूर्ण काव्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान अधिकारी है। यदि इस अपवाद को अपवाद ही मान ले तो छायावादी कविता में नारी को जो महत्व प्राप्त हुआ है वह पहले की अपेक्षा कहीं अधिक गौरवशाली है। नारी के सभी सामाजिक रूपों को न अपनाते हुए भी छायावादी कवि ने एक ही क्षेत्र में नारी को जो महिमा प्रदान की वह स्तुत्य है। श्रद्धामयी करुणामयी कल्याणी कलामयी तथा प्रेममयी जीवन सहचरी नारी का चित्रण करके छायावादी कवियों ने समाज और साहित्य को अभिनव जीवन रस से सींच दिया। कवि के शब्दों में अकेली सुंदरता कल्याणी सकल ऐश्वर्यों की संधान देवी माँ सहचरी प्राण।